हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय दामोदर देश भक्तवृंद, बहुत सौभाग्य की बात है कि श्रीमद् भागवत के हृदय, श्रीमद् भागवत के मुस्कुराते हुए मुख दशम स्कंध के अंतर्गत श्री कृष्ण के हृदय रास पंचों अध्याय का इस जीवन में श्रवण और वर्णन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस प्रसंग को शुरू करते समय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री बादरायण वाच भगवान अपि तारात्रि। ये लीला भगवान कह रहा है। ये लीला किसकी है? भगवान की है। भगवान अपि तारात्रि शारद उत्फल मल्लिका, वो पूर्ण शरद ऋतु का चंद्रमा आकाश में प्रकाशित हुआ। वीक्षा रंतुम मनस चक्रे, अपने मन में ए विचार आया, योग मायाम उपाश्रितः, अपनी योग माया का के माध्यम से ये लीला की। तो ये लीला न तो महामाया की है और न सामान्य मानव की है। ये लीला भगवान की है और ये योग माया के द्वारा हो रही है। हमने ये सुना कि भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया और उनका स्वागत करके वापस जाने के लिए कहा। गोपियों को भगवान ने धर्म उपदेश दिया और गोपियां सर्वधर्मान परित्यज किए कक्षा की या क्लास की थी। उन्होंने प्रणय गीत गाया, भगवान हार गए गोपियां जीत गई, भगवान मान गए और महारास हुआ। ये महारास जमुना जी के तट पे बंसी बट पे वृंदावन में हुआ। इसको पंचायती रास कहते हैं। इसमें सब वर्ग की गोपियां आई, विपक्ष गोपियां, स्वपक्ष गोपियां, तटस्थ गोपियां, ये सारे वर्ग की गोपियां विशेष रूप से इसमें रास में भाग लेने के लिए आई है। सबको रोकने का प्रयास किया गया लेकिन सब रास्ते की रुकावटें तोड़ के श्री कृष्ण के पास आई। जिनको रोका गया वो तो दंडकारण्य के ऋषि जो गोपियों के रूप में आए थे, उनको रोका गया। वो वहीं से ध्यान करके कृष्ण के पास पहुंच गई और रास में एक कृष्ण एक गोपी के साथ जैसे नृत्य कर रहा था, तो सब गोपियों को एक प्रकार का सौभाग्य के कारण सूक्ष्म मान हुआ कि सिर्फ कृष्ण केवल हमारे साथ ही रास कर रहे हैं। ये गिरिधारी, ये दामोदर अपने भक्तों के अंदर ऐसे व्यक्तिगत मान अभिमान को स्वीकार नहीं करते हैं। और दूसरा कारण, राधा रानी इस रास से संतुष्ट और आनंदित नहीं थी क्योंकि सब प्रकार की गोपियां थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के संग उस रास मंडल से अदृश्य हो गए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने वृंदावन से गोवर्धन को महान कहा है। वहां भी रास लीला होती है परंतु वहां विपक्ष की गोपियां नहीं होती। उससे महान राधा कुंड को कहा है, वहां भी रास व्यारा होता है पर वहां केवल सुपक्षीय गोपियां होती है और कोई नहीं होता। सो राधा रानी के संग श्री कृष्ण चले गए। सब गोपियां विलाप करती हुई वन में लता पता से वृक्ष से सबसे पूछ रही हैं और चरण चिन्ह एक गोपी के और श्री कृष्ण के देखे तो और हृदय में ईर्ष्या हुई कि हमको छोड़ के एक के साथ चले गए हैं। फिर एक वृक्ष के वहां कृष्ण के धंसे हुए पांव धरती के अंदर देखे तो लगा कि फूल उतारने के लिए अपनी प्रिया को कंधे के ऊपर चढ़ाया है। अब जो राधा रानी के मन में संकल्प होता है वो गोपियों के मन में होता है, क्योंकि सारी गोपियां राधा रानी का काया व्यू है। काया व्यू का मतलब उसी के अपने श्री विग्रह का ही विस्तार है। तो राधा रानी ने कहा मेरी अपनी सारी सखियां अपने प्रीतम श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल है। तो उन्होंने श्री कृष्ण को कहा अब आगे मैं नहीं चल सकती, थक गई हूं, आप अगर ले जाना चाहें तो मुझे कंधे के ऊपर चढ़ा दीजिए। कृष्ण नीचे बैठे और राधा रानी कंधे पे चढ़ने के लिए जैसे प्रयास किया, कृष्ण राधा रानी को छोड़ के फिर अदृश्य हो गए। राधा रानी मूर्छित हो गई और उसी वन में रेत में मुंह से लार निकल रही है, आंखों से आंसू, और ऐसे पड़ी हुई गोपियों को मिली। और वहां लिखा है शिला सनातन गोस्वामी ने के राधा से इतना प्रकाश निकल रहा था कि दूर से उनको दिखाई दिया कि कोई प्रकाश पुंज, और नजदीक आके देखा तो अपनी सखी करके माना। और सब चंद्रावली के पक्ष ने भी, जो विपक्ष पक्षी है वो भी जब देखा कि ये भी कृष्ण के विरह में, और कोई गोपी मूर्छित नहीं है, मूर्छित केवल राधा रानी हुई है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ कृष्ण प्रेमिका की श्रोमणी है। अब सबका एक जैसा मन हो गया क्योंकि सभी कृष्ण के विरह में। अब कहा कि इस घोर वन में कृष्ण को ढूंढने से मिलेगा नहीं, जहां हमसे मिले थे जहां से जुदा हुए थे वहीं चलती है। और संभवतः ये सिद्धांत तो उनके मन में आया नारद जी का, को जो भगवान ने वचन दिए थे ना हम तिष्ठामि वैकुंठे न योगी नाम हृदयशुवा यत्र गायन्ते मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मरने के बाद मिलूंगा, या मैं योगी योगियों को हिमालय की गुफाओं में मिलता हूँ, ऐसे नहीं है। जहाँ प्रेम पूर्वक मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, मेरा गीत गाते हैं, वहां मैं प्रकट हो जाता हूँ। सो गोपियों ने कहा ठीक है, वैकुंठ में भी होंगे, योगियों के हृदय में भी होंगे, लेकिन हमें तो केवल भगवान के गुणगान करना चाहिए, उनको प्रार्थना करनी चाहिए दर्शन देने की, और निश्चित रूप से वो कीर्तन को प्रेम करते हैं और कीर्तन में प्रकट हो जाएंगे। ये संकल्प करके सारी गोपियां जमुना जी की पुलिंद पे किनारे पे आई हैं, और जमुना जी के किनारे के ऊपर आई हैं तो जो जितने गोपियों के अलग अलग युद्ध है, ग्रुप है, वो सब साथ बैठे हैं और एक एक ग्रुप एक एक श्लोक गा रहा है। ऐसा भाव कुछ आचार्यों ने दिया है कि 19 श्लोक है और 19 ग्रुप ने गाया है, और इन गोपियों में दो तो ये वर्णन किया है कि कुछ विवाहित गोपियां हैं और कुछ कुंवारी गोपियां हैं, कुमारियां हैं, दोनों प्रकार के पक्ष है। तो 9-9 श्लोक दोनों पक्षों ने गाए हैं। तो ये श्लोक गाए साथ क्यों गा रहे हैं कि अब हमको दर्शन सबको साथ मिले, अकेले अकेले गाएंगे तो एक एक को मिलेगा वो ठीक नहीं है। तो एक ये ग्रुप स्पिरिट जो है गोपियों का, और भगवान को प्राप्त करने में एक दूसरे का सहयोग करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारी शिक्षा के लिए कि हमको हमेशा सामूहिक रूप से कोऑपरेटिवली और कोऑर्डिनेट करके कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, कॉम्पिटिशन नहीं। अब कॉम्पिटिशन समाप्त हो गई, अब स्पर्धा नहीं है, अब सबका एक दूसरे के साथ सहयोग है, और सभी श्री कृष्ण को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। तो ये गोपियों का पहला गीत का श्लोक आज इसका हम श्रवण कर रहे हैं, और अब हमने सुना तो पूर्णाद राधिका देवी बहुत मधुर सुर में, और छोटी बच्चियां थी संभवतः जो गा रही थी उनके साथ गीत, ऐसे लग रहा था कि पूर्णमासी गोपियों को कृष्ण के साथ मिलाने के लिए और उसके प्रेम को प्रकट करने के लिए गोपी गीत का उच्चारण कर रहे हैं। ये वातावरण ब्रज की लीला का दर्शन दे रहा था दामोदर देश वालों के भाव को। सो कृष्ण कृपा करे कि आप सबके हृदय में गोपियों के इसके ऊपर चर्चा करने से पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि पूर्व आचार्यों को प्रार्थना करते हैं, श्रीधर स्वामी आदि टीकाकार के चरणों में प्रार्थना करते हैं जिनका उचिष्ट हम आपको परोस रहे हैं। और श्री राजीव गोस्वामी लिखते हैं, हम तो गोपियों को ही प्रार्थना करते हैं कि उनके भावों को हमारे हृदय में वो स्फुर्त करें कि हम उनको भावों को उनके शब्दों को समझ सकें। और हम तो जैसे पहले ही कहा था श्रील प्रभुपाद और परंपरा के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि इन उनके शब्दों को गोपियों के भाव को यथारूप कहने का सामर्थ्य दें, यथाशक्ति उसका वर्णन कर सकें। गोप्यौचो जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शर्यत इन्दराशश्वदत्रयी दैत दृश्यतां दिक्षुतावका त्वयि धृता स्वास त्वां विचिन्नवे। ये एक गोपियों का युद्ध, जयति ते अधिकम जन्मना व्रज, जब से आपने व्रज में प्रकट्य किया है, वैसे हम कहें कि मथुरा में प्रकट हुए लेकिन मथुरा में तो भगवान का जन्म उत्सव नहीं मनाया गया, जन्म उत्सव तो बनाया गया गोकुल में। तो व्रज में जब से आपका प्रकट्य हुआ है जन्मना व्रज, जयते ते अधिकम, ते अधिकम, तब से ये व्रज अति अधिक सराहनीय और सुंदर हो गई है। क्यों, क्या हो गया ऐसा ब्रज में आपके जन्म से, भगवान के मेरे जन्म से क्या हो गया। शर्यत इंद्रा शश्वत अत्र ही, शर्यत का मतलब रहती है, इंद्रा का मतलब लक्ष्मी भाग्य की देवी, शश्वत सदा के लिए, अत्र ही, अब तो लक्ष्मी यहां गली गली में घर घर में सर्वत्र विहार कर रही है, इसका मतलब सब समृद्धि यहां है, सब लोग सुखी हैं। आपके प्रकट होने से अब नंद के घर में आनंद आ गया, आप नंद के आनंद भयो आह्लाद हो गया, जात आह्लाद हो नंद, नंद के घर में तो जात आह्लाद हुआ, ब्रजवासी तो आनंद में मगन हो गए। और लक्ष्मी तो यहां गली कूचे में शहर घर में सब जगह क्रीड़ा कर रही है, और करे भी क्यों नहीं है? अपना आदि स्वामी जब यहां आया है तो सर्वत्र विचरण कर रही है। परंतु दैत हे हमारे प्रेमी, दैत कहते हैं प्रेमी को, हे हमारा, हे हमारे प्राणनाथ, हे हमारे प्रेमी, दृश्यताम दिक्षु तावका, आपका कौन सी दिशा में हम दर्शन करें, हम आपको देखना चाहती हैं, आप हमारे आंखों के सामने प्रकट हो, हम तो सभी दिशाओं में देख चुकी, अब आप हमारे, ये तो ऐसा ही भाव है जैसे हम जगन्नाथ को कहते हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी, तो हमारे दृश्यताम आपका दर्शन करना चाहती हैं, कैसे हम आपको, दिक्षु कौन सी दिशा में कहाँ हैं, तावका हम तो आपकी हैं, हम आपकी भक्तन हैं, हम आपकी सेविकाएं हैं, सारा ब्रज आनंदित लक्ष्मी से है, सब सुखी है, और केवल हम आपके प्रिय हैं वो दुखी है, केवल इतने दुखी नहीं है, तावका त्वयि धृता, त्वयि धृता, त्वयि आपके धृता धारण किया हुआ है अश्व, ये जी है सांस जो है ना ये अभी तक चल रहे हैं, ये धारण किया हुआ है, केवल आपको ढूंढ रही है। नहीं, ये गोपी गीत विरह का गीत है, भगवान के विरह में, ये इसको गौरी वैष्णव भाव में विप्रलंबा भाव का गीत है। इस ये गीत जिसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्राइंग स्कूल है। ये सबके आंखों से आश्रु धाराएं बह रही हैं, सबका हृदय बहुत वृह की पीड़ा से वेदित है। और ये गोपियां कह रही हैं, हे गोपियां कह रही हैं, हे प्रीतम, जब से आपने ब्रज में प्रकट आपका हुआ है, जन्म हुआ है, ये ब्रज अति महिमामयी हो गई है, अधिक वैकुंठ से भी अधिक महिमामयी है। वैकुंठ में ये लीलाएं नहीं होती, वैकुंठ में जमुना कहां से आएगी, वो वैकुंठ में गोवर्धन कहां है, वैकुंठ में ग्वाल बाल कहां है, वैकुंठ में वात्सल्य प्रेम कहां, वैकुंठ में तो 12 रसों में से केवल 2.5 रस हैं। और श्री कृष्ण जहां ब्रज में प्रकट हुए हैं, यहां तो अखिल रस मूर्ति श्री कृष्ण है, रसराज है। अब जब से आप यहां आए हैं, तब से ये ब्रज इतना महिमामयी हो गया है, अधिक महिमामयी हो गया है। किससे? वैकुंठ से भी। अब वैकुंठ के पूजन्य महा लक्ष्मी देवी सर्वत्र यही विराजमान है और विलास कर रही है, और केवल हम आपके लिए, हम आपके भक्त सेविकाएं हैं, हमारे जीवन को धारण किए हुए हैं, ये श्वास चल रहे हैं, हम आपको सर्वत्र ढूंढ रही हैं, कृपा करके अब आप हमको दर्शन दीजिए। श्री प्रभुपाद के शिष्यों ने केवल इसके भावार्थ में लिखा है, ये जो गोपी गीत के श्लोक है, ये विशेष एक संस्कृत के छंद में है, जिसका हर दूसरी लाइन का दूसरा शब्द एक जैसा है और सातवां शब्द एक जैसा है। जैसे आप देखिए क्या है यहाँ, जयति ते शर्यत ई, तो ते और ई और दृशी और धृती, ये जो शब्द है एक जैसे है, और अंतिम शब्द ही ते, तो ये एक मधुर सुर गोपी गीत का अपना ही है। मैं देख रहा था कौन सा ये छंद है, लेकिन अभी तक मैं, देखते हैं कल तक इस छंद का पता लगाते हैं कि कौन सा छंद है ये। तो प्रभुपाद जी के शिष्य ने तो इतना ही तात्पर्य लिखा है कि गोपी गीत के छंद अपने आप में बहुत मधुर हैं, और इसके अंदर शब्दों को ऐसे आवर्ती हुई है जिसमें रस है। चक्रत्व्याप लिखते हैं, इस अध्याय में गोपी गीत का वर्णन है। वो कैसे हैं गोपी गीत? कहते हैं वो एक कमल के फूलों का समूह है, जैसे गुलदस्ता होता है ना, जैसे वे किसी वेश के अंदर फूल सजा के रखें, ये बहुत सुंदर कमल के फूलों का एक समूह है जिसमें प्रेम की मधु डली हुई है। हनी जो इसमें है, मधु जो है, वो प्रेम की है। और जो इसका स्वर है, जो इसका मीटर है, जो इसका छंद है, वो इसकी सुगंध है। ये एक बहुत सुंदर उपमा दी है, एलोगरी दी है, एनालॉजी दी है कि गोपियां कमल के पुष्प हैं, उनका प्रेम मधु है, और इस गीत का स्वर उसकी सुगंध है, और ये सुगंध और ये मधु जो गोपियों के हृदय से निकल रही है और वाणी के द्वारा प्रकट हो रही है, ये कृष्ण रूपी भौंरे को आकर्षित कर लेगी। इन गीतों का, जैसे भौंरा अपने सुगंध से भौंरे को आकर्षित करता है, बम्बल बी को, ऐसे गोपियों का ये गीत कृष्ण रूपी काले भौंर को अपनी ओर आकर्षित कर देगा। और इसके उपरांत चक्रवर्ती पाठ कहते हैं, हम सनातन गोस्वामी पाद और श्रीधर स्वामी और जो हमारे गुरु वर्ग हैं, उन सब के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि क्यों उनके ही भावों का उचिष्ट जो है जो हमारे जीवन का आधार है, उसको उसके उनकी कृपा से गोपी गीत का वर्णन करने का प्रयास और साहस कर रहे हैं। और हम तो कहते हैं कि चक्रवर्ती पाद, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत शिला प्रभुपाद जी, इन सब के चरणों का और वर्तमान गुरु वर्ग के चरणों का ध्यान करके उनके उचिष्ट को हम प्रयास कर रहे हैं आपके साथ संभाषण में वर्णन करने के लिए। गोपियां कहती हैं, हे प्रीतम, व्रज अधिक महिमामयी हो गया है आपके प्रकट्य से। तो इसका अर्थ किससे अधिक हो गया ये अगर पूछा जाए तो कहते हैं कौन से लोक से अधिक हो गया है। तो एक प्रश्न उठाते हैं, परंतु वैकुंठ तो बहुत महान है, हो सकता है स्वर्ग आदि से अधिक होगा। नहीं, बोला वैकुंठ तो महान है, तो व्रज वैकुंठ से भी महान है। वैकुंठ अद्भुत है, दिव्य है, परंतु व्रज परम महान है। जैसे जैसे हम कहते हैं भगवद गीता में, जैसे कहते हैं ना, ज्ञान गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, तो ये वैकुंठ आदि जो है कहा जाए कि बहुत महिमामयी है, अधिक महिमामयी है, और ये ब्रज महामहिमामयी है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, और ये आपके कारण है। और फिर और लक्षण बता रहे हैं ब्रज के क्यों है अधिक का। बोला महालक्ष्मी इंदिरा, जिसकी वैकुंठ में पूजा की जाती है, वो ब्रज में स्वयं सेवा कर रही है। जिस लक्ष्मी की पूजा ब्रज में होती है और सारे देवता हाथ जोड़ के उसकी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, वो ब्रज के अंदर स्वयं सेवा करने के लिए आ गई है। इसलिए ब्रज वैकुंठ से अधिक महिमामयी और समृद्धिशाली है। इसलिए ब्रज में सर्वत्र आनंद ही आनंद है, क्योंकि लक्ष्मी यहां विहार कर रही। बस केवल हम आपकी प्रिय गोपियां ही है जिनको बहुत ज्यादा पीड़ा है, बाकी सब सुखी है, भाव ही है। लक्ष्मी यहां है, इतना बड़ा महान ब्रज का सौभाग्य है, परंतु ऐसे सौभाग्य मय ब्रज के अंदर हम आपकी प्रीतम, हे प्रीतम, हम आपकी प्रियसी बहुत अधिक पीड़ा में है। और कारण क्या है? बोला आप हमारे से अदृश्य हो गए, हम आपको देख नहीं पा रही। युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्राय विष्णम सुन्यायतम जगत सर्वम गोविंद रहने में। ये जो चेतन महाप्रभु का भाव है कि एक क्षण के लिए आंखों से आप दूर होते हैं तो लगता है कि युग बीत गए, और इतने सुंदर समृद्धिशाली ब्रज में जहां लक्ष्मी ही पग पग के ऊपर और कण कण में विलास करके सबको आनंद दे रही है, वहां हम ही केवल एकमात्र दुखी है, और वो भी आपकी प्रेमिका है। और जो दुख हम भोग रही हैं वो न कभी देखा गया है, न सुना गया है, और न किसी को पता है उसका। हम तो वन के अंदर दुख भोग रही हैं, आपको ढूंढ रही हैं जमुना के किनारे पे। हम आपको इसलिए प्रार्थना नहीं कर रही हैं कि आप हमारा दुख दूर कीजिए, बस एक बार हमारे ऊपर दृष्टि डाल दीजिए, दृश्यता, एक आपकी कृपा दृष्टि डाल दीजिए, दर्शन दे दीजिए। हम संसार का दुख तो है नहीं कि दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करें, आपके अदृश्य के कारण जो दुख हुआ है उसका एक ही मात्र चिकित्सा है कि आप दर्शन दे दीजिए। और कहां दर्शन दीजिए? ऐसी वृंदावन में अत्र, जहां सर्वत्र सुख है, उसके बीच में हम दुखी हैं, क्या मैं देखूं? कहते दृश्य आता, मुझे दर्शन, क्या देखूं? देखो ये कि इस समृद्धिशाली वृंदावन में आपको चरण आपके चरणों में प्राण निछावर करने वाली गोपियां आपको ढूंढते ढूंढते प्राण त्यागने की स्तर पे आ गई हैं। ये कितना दुखदाई दृश्य दर्श दृश्य है, आप हमारा हाल तो देखो। इतना पीड़ा विरह की वेदना में हमारे को ऐसे भय के स्थिति में क्यों डाल रहे हो? आप ऐसे क्यों सोच रही हो गोपिया? मैंने कैसे आपको दुख में डाला? ऐसे अगर कृष्ण कहे तो गोपियां कहती हमने अपने प्राण ही आपको दे दिए। त्वई धृत अश्वा, त्वई धृत अश्वा, हमारे प्राण आपको दे दिए। अगर हमारे पास अपने प्राण होते तो ठीक है, वो है नहीं, और हम आपके प्रेम में पागल हो गई, हमारा शरीर आपके साथ रास में विहार कर रहा था, अब आपके विरह में जल रहा है, और हम इस विरह की आग में जल के भस्म गई हो गई होती, परंतु प्राण ही नहीं है, प्राण आपके पास है तो कैसे मरे? मर भी तो नहीं सकती, क्योंकि हमारे प्राण आप जैसे प्रीतम स्वामी में निवास करने में सुख ले रहे हैं और हम यहां दुखी हैं। तो अगर आपके प्राण इतने सुखी हैं, अगर आपके प्राण इतने सुखी हैं मेरे जैसे स्वामी में, तो फिर आप कैसे शरीर त्यागोगी दुख के कारण? तो इसका अर्थ ये है, ऐसे लगता है कि कृष्ण आप हमारे दुख को देख के सुखी हो रहे हो। इस श्लोक में वही बात का है कि दूसरा शब्द एक जैसा है, दूसरी लाइन का दूसरा शब्द एक जैसा है और सातवां शब्द एक जैसा है। जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, श्री जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, गोपियां मेरे ऊपर कृपा करें कि मैं उनके भावों को जो उन्होंने कृष्ण के प्रति कहा है उसको आपके साथ शेयर कर सकूं। और मैं गोपियों ने जो इस गीत का रस का पान किया है और जिसका श्रीधर स्वामी ने पान किया है, मैं उसका उचिष्ट आपको परोस रहा हूं, ऐसे कह रहे जीव गोस्वामी। ब्रज ब्रज अधिक महिमामयी है, आपके जन्म से लक्ष्मी यहां नित्य निवास करती है, और कहीं लक्ष्मी नहीं दिखती है, वो बहुत चंचल है। अधिक शश्वत, सदा यहां रहती है, और कहीं सदा नहीं रहती है, आती जाती रहती है, लेकिन यहां नित्य निवास करती है। जहां लक्ष्मी रहती है वहां सारा धन समृद्धि सुख रहता है, इसलिए सबके लिए मंगल है, क्योंकि वो भाग्य की देवी है, सब जगह कल्याण कल्याण है, मंगल ही मंगल है। बस हम ही केवल दुखी हैं, ये हमारा भाग्य है, और हमारा दुख भी बहुत गहरा और पीड़ामय है। आप भगवान सर्वव्यापक है, सबको जानते हैं, और आप महादयालु हैं, आप हमें बहुत प्रिय हैं, क्या आप ये नहीं जानते? वो प्रार्थना कर रही है गोपियां, और सब चीजों को इस वक्त भूल जाओ, हे श्री कृष्ण केवल ये आप ही जानो, आपको ये पता हो और किसी को पता ना हो। हम अपना दुख आपके सामने प्रकट कर रही है, आप दूसरे का दुख देखकर हमारा दुख देखकर आप कृपा करके प्रकट हो जाइए, ये इसका अर्थ है। जो गंभीर अर्थ ये है कि आप हमारी ब्रह वेदना की पीड़ा देखकर प्रकट हो जाइए। तो ये वेदना क्या है, ये दर्द क्या है आपका? जिन्होंने आपको स्वीकार किया है, जो अपने आप को आपका मानते हैं, तावकाह, जो अपने आप को कहते हैं हम कृष्ण के हैं, वो सब दिशाओं में आपको ढूंढ रहे हैं, भटक भटक के ढूंढ रहे हैं, और यहां तहां चलते चलते थक गए हैं, हार गए हैं। और इस आपको ढूंढने में बहुत बड़ी पीड़ा हुई है। एक तो रात का समय है और एक वन है और एक हम अबलाए हैं और हम सब जगह चारों ओर विलाप करके आपको पुकार रही हैं, यही तो हमारा दुख है, नहीं तो और कोई दुख नहीं है। दैत्य का मतलब है प्रेमी, और इसके साथ इसमें भाव है दया का, हे दयालु। और ये बड़े दुख के पीड़ा से कह रही है, ये ब्रह की वेदना से कह रहे हैं, दैत्य कह रही है। कृष्ण स्वामी के शब्दों में दैत्य का अर्थ है अपने हृदय को हाथ में रख के भगवान को दिखा रही है कि देखो इसमें कितनी पीड़ा है, ये जल रहा है अंदर से, घायल हो गया है आपके जुदाई में। इससे थोड़ा सा लगता है कि भगवान को वो उल्हाना दे रही है कि ऐसे हमको दुख में क्यों छोड़ गए। और प्रेम में अगर थोड़ा छल न हो तो मानवता में वो प्रेम रहता नहीं है, प्रेम में थोड़ा सा छल होता है, ऐसा लिखा है मानव समाज में। अगर उसमें जुदाई न हो तो फिर प्रेम प्रफुल्लित नहीं होता है, प्रेम में रस नहीं आता है, और जुदाई में बहुत पीड़ा होती है, उसमें जीना मुश्किल होता है, और यह सत्य है। ये सामान्य नारियों की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने जीवन को इस आशा में अभी तक जीवित रख बैठी हैं कि हम आपको पाएंगी, हमको आपसे मिलेंगी, आप हमको दर्शन देंगे। और ये हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां केवल आपके लिए है प्रीतम। हमने तो सब सर्वस्व अपना आपको समर्पण कर दिया है। ये हमारा श्रृंगार हमारे सुंदरता के लिए नहीं है, आपको पसंद है इसलिए है। और इन सारे श्लोकों में ऐसे ही गान की विधि है, दूसरा और सातवां शब्द एक जैसा है। ये मुक्ताफल कमेंट्री में जो है इसका वर्णन किया है। फिर सनातन गोस्वामी लिखते हैं, गोपियां हमारे ऊपर प्रसन्न हो और उनकी कृपा से उनके शब्दों को और श्रीधर महाराज की तात्पर्य से भाव लेकर हम आपको बताएं। पहले तो वही बातें हैं, वैकुंठ से क्यों ब्रज महान है, आपके जन्म से लक्ष्मी यहां कैसे निवास कर रहे। अब एक श्लोक लिखते हैं, तत्रारभ्य नंदस्य व्रज सर्वसमृद्धिमान हरेर निवासात्मा गुणैः रमाकीर्णम अभुन्नरप। ये श्लोक आप पढ़ के आए, दसवें स्कंद के पांचवें अध्याय का 18वां श्लोक है। महाराज परीक्षित, नंद महाराज का महल निश्चित रूप से भगवान का धाम है, और इसलिए सब समृद्धि वहां अपने आप उपस्थित है। फिर भी कृष्ण के प्रकट्य से ये पूरा ब्रज रमा कीड़ा, रमा लक्ष्मी की कीड़ा, ये लीला की स्थली हो गई है, सबकी सेवा में लक्ष्मी यहां लगी हुई है। और एक भाव ये भी देते हैं, ठीक है कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए लेकिन मथुरा से भी समृद्धि ब्रज की ज्यादा है, अथवा वो ये मानते हैं कि कृष्ण का जन्म तो हुआ ही ब्रज में है क्योंकि यही तो जन्मदिन मनाया गया, यही तो भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया। इतना सारा सुख है ब्रज में, केवल हम ही दुखी है, ये आपको मालूम नहीं है। कृष्ण हमारे प्रिय, आप तो दयालु हैं, आप तो पूर्ण पूर्ण ज्ञान की मूर्तिमान स्वरूप है, वो प्रार्थना कर रही हैं, दृश्यताम आप हमारे दुख को देखिए, हम बहुत बड़े वेदना में दुखी है, आइए आइए दर्शन दीजिए, हमें स्वीकार कीजिए, हम तावका, हम आपकी हैं, हम आपकी सेविकाएं हैं, हम आपको सब दिशाओं में ढूंढ रही है और बहुत पीड़ा हो रही है और हम अब थक गई हैं और आपकी है इसलिए आपको ढूंढ रही है और आपकी जुदाई में दुख भोग रही है। यहां वो हम ऐसे नहीं कह रहे हैं और ऐसे भी नहीं कह रहे हैं गोपियां, वो ऐसे नहीं कहती हैं, क्यों कि निम्रता के कारण, और निम्रता क्यों आई क्योंकि वो हार चुकी है कृष्ण से और कृष्ण को उनको त्याग के चले गए हैं इसलिए वो अपना नाम नहीं ले रही है। इस श्लोक में ये नहीं कह रही हैं हम दुखी हैं, गोपियां दुखी हैं, ऐसे नहीं कह रही हैं, ये उनकी निम्रता है, ये उनका कृष्ण के त्यागना के कारण हार है, पहले जीत गई थी कृष्ण से और रास में भाग लिया, अब हार गई और कृष्ण ने त्याग दिया इसलिए निम्रता आ गई। और ऐसे भी माना जाए कि ये उनका गीत जो उनकी सेविकाएं हैं उनके दुख का सूचक है, वो बड़ी दुखी है। आगे 15 श्लोक में कहते हैं अपश्यताम, इसका मतलब सामान्य भगवान के अदृश्य होने की पीड़ा का सूचना देता है ये श्लोक, मानो भगवान कहे कि आप कम बुद्धि वाली हैं, मूर्ख हो क्या, काहे के लिए मेरे को अपना जीवन देती हो, और किसी को दे दो। तो कहती हैं आप ही केवल हमारे प्रेमी हैं, किसी और के साथ संबंध सुखदाई नहीं है। और आपकी जुदाई में हम जी नहीं सकते हैं, संसार में जुदाई होती है परंतु आपकी जुदाई में हम जी नहीं सकते। आप हैं इसलिए मैं हम प्राण नहीं त्याग सकती, हम अपने जीवन को इसलिए केवल रख रही हैं क्योंकि आपसे मिलेंगी ये आशा है, हमने अपने प्राण ही आप में रख दिए हैं। त्वई धृत आश्व, त्वई मतलब आप, धृत का मतलब रखे, आश्व का मतलब प्राण। तो यहां हमारा ये पहला श्लोक पूर्णाहुति पे पहुंचता है, हम दूसरे श्लोक का शुभारंभ करते हैं, कल के लिए रखा है दूसरा श्लोक परंतु समय तो मेरे ख्याल में अभी हुआ नहीं है। शरद उदास्य साधु जात सरज जोदरा श्री मुषादृशा सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका वर्द निघंतो नेह किं वदा। अब उदाहरण दे रही हैं भगवान की आंखों का, ये दूसरा गोपियों का दल बोल रहा है। शरत शरद ऋतु का उदास्य, जल के सरोवर में साधु जात सत सरसी जा, बहुत सुंदर एक कमल खिला है, सरसी जा कमल खिला है, साधु जात बहुत सुंदर खिला है, उधर बीच में श्री बहुत सुंदरता मुशा, वो तो सारी सुंदरताओं से श्रेष्ठ है, दृश्या आपने जो दृष्टि डाली ना उन आंखों से, सूरत नाथ हे हमारे प्रीतम, ते आपने अशुलक, हम कुछ नहीं आपसे सेवा के बदले में वेतन नहीं लेती हैं, बिना वेतन वाली दासी का आपकी सेविकाएं हैं, वरदा ये सबको वरदान देने वाले निघंत हमको क्यों मार रहे हैं, हमारा वध क्यों कर रहे हैं, यह इस जन्म में किम वधा, हमारा वध क्यों कर रहे हैं। तो ये श्लोक के भाव में दूसरी पक्ष की गोपियां, उन्होंने कहा हमारे को दर्शन दे दे, हमारी पीड़ा है, तो भगवान मानते क्या पीड़ा है, बोला आप तो हमारा वध कर रहे हो। हे प्रेम पुरुषोत्तम भगवान, आपकी सुंदरता और आपकी कटाक्ष, आपकी चितवन, वो जो सुंदर से सुंदर शरद ऋतु के खिले हुए कमल की पंखड़ियों से भी ज्यादा शोभायमान है, हे वरदाता आप अपनी सेविकाओं को, निःशुल्क सेविकाओं को इन कटाक्ष से, आंखों की तिरछी नजर से क्यों वध कर रहे हैं हमारा, ये भी शिकायत है दुख और पीड़ा के कारण। प्रभुपाद के शिष्यों ने लिखा है शरद ऋतु में विशेष सुंदर कमल खिलते हैं सरोवरों में, परंतु भगवान के जो कमल नयन है, कभी हमने आपको बताया होगा कि भगवान के अंगों का तुलना कमल से इसलिए दी जाती है कि कमल भौतिक जगत की सृष्टि में उत्पन्न नहीं है, भौतिक जगत की सृष्टि तो की है ब्रह्मा ने, लेकिन ब्रह्मा जी के जन्म से पहले कमल तो भगवान के ही नाभि से निकला है, तो ये कमल तो चिन्मय पहले से था, ब्रह्मा का सृष्टि किया हुआ नहीं है, इसलिए कमल के साथ भगवान के अंगों की, भगवान के चरण कमल, भगवान के कर कमल, भगवान के कमल नयन, कमल नाभि, कमल मालिना, ये सब कुछ कमल कमल भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। सो भगवान श्री कृष्ण की चितवन कटाक्ष, एक तिरछी नजर जो है ना, उसकी सुंदरता कमल के शरद के सरोवर में खिले हुए कमल से महान है, अति सुंदर है, ये प्रभुपाद जी के शिष्यों का तात्पर्य है। चक्रवर्ती पाद देखते हैं, कृष्ण कह रहे हैं, पहले गोपियों ने जो श्लोक कहा मानो कृष्ण कहे, आप कैसे ये निर्णय किया है कि मैं आपके, मेरी इच्छा है कि आप दुखी हो, मानो कृष्ण कहे कि मैं कैसे, मैं थोड़ी चाहता हूं कि आप दुखी हो, तो ये और पीड़ा के कारण कहती है, केवल दुख की बात नहीं है, आप हमारा दुख नहीं देखना चाहते, आप तो हमारा वध करना चाह रहे हैं, मारना नहीं चाहते हैं, केवल केवल आप हमारे को दुख नहीं देना चाहते, आप तो हमारा प्राण हरण करना चाहते हैं, वध करना चाह रहे हैं, कौन से अस्त्र से वध करोगे। तो यहां गोपियां कहती हैं, आपने अपनी आंखों के इशारे से हमको बुलाया, श्रुतनाथ प्रेम करने के बुलाया, सुरतनाथ कॉलिंग अस फॉर लव मेकिंग, हमको हे प्रेम पुरुषोत्तम आपने अपने आंखों से इशारे से बुलाया और हमें सुख दिया, वरद और जो ये आपकी दृष्टि है वो जलती हुई अग्नि के, ये प्रेम की अग्नि जो आपके हृदय में जल रही है ना, और आपके इन दृष्टि से जो प्रेम के बाण बरसा रहे हो ना, इनकी गर्मी से हमारे जो आपकी सेविकाएं हैं जिनको आपने बिना मोल के खरीद लिया है, अशुलक दासी का ये हमारा वध नहीं है, हमारे वध के लिए आपको कई चक्र सुदर्शन चक्र की जरूरत नहीं है, नहीं सारंग धनुष की जरूरत है, न गदा की जरूरत है, ये आपकी कटाक्षी काफी है। इसलिए वरदा द और दी इसका अर्थ है मिटाना, और वर का मतलब है इस जगत में और आने वाले जगत में जो हमारा सुख है ना उसको आपने मिटा दिया, ये वरदा का और अर्थ है। हे वरदा, लोगों को देते हैं वरदान, और हमारा इस जगत और आने वाले जगत के सुख को भी आपने नाश कर दिया। वास्तव में अगर आप हमारे को अपनी मानते, स्वीकार करते, तो कोई दोष नहीं है कि आप हमारी रक्षा करें या हमको जला दें। क्या आप हमें स्वीकार करते हैं? आपने हमें अपनाया है? आपने तो हमें बिना किसी वेतन के खरीदा है। इसका अर्थ क्या है? ये कौन सी गोपियां बोल रही हैं? ये वो गोपियां बोल रही हैं जो कुंवारी हैं, जो विवाह नहीं है। वो कहते हैं कि आपने हमारे को विवाह के धागे में नहीं बांधा है, विवाह में एक धागा बांधा जाता है, तो उस धागे में नहीं बांधा है आपने हमारे को, मुफ्त में खरीदा है। हम तो आपकी निशुल्क दासी का हैं, अपनी इच्छा से आपकी मूर्ख है हम, हमारी मूर्खता ने आपकी निशुल्क दाक्षिता बनने के लिए हमको आपके चरणों में लाके खड़ा कर दिया है। और भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि कृपा दृष्टि भी है, कृपा कटाक्ष भी है, और ये जो अक्ष है वो काटती है हृदय को, कृपा भी करती है और प्रेमियों को पीड़ा भी देती है। इससे भगवान श्री कृष्ण के मोह में डालने का, प्रेम में पागल करने का, और बड़ी चतुराई से प्रेमिका का हृदय चुराने का सूचना मिलती है। तो भगवान की दृष्टि से ये कहते हैं भगवान के लिए, ये तो गोपियों की बात है कि चोरी करने के लिए कोई तो लुटेरा बन के आता है, कोई सो जाता है तब चुराता है, तू तो जागते सामने आता है और आंखों आंखों से देख के जैसे जादूगर किसी को मोहित कर ले, ऐसे हमें पागल कर देते हैं, हमें पता ही नहीं लगता है और आप हमारा हृदय चुरा के चले जाते हैं, और आपके जाने के बाद पता लगता है कि हम बिना मन के, बिना हृदय के, बिना प्राण के बस ऐसे ही आपकी पीछे पागल की तरह घूम रही है। ये आपकी दृष्टि का चमत्कार है। आपकी दृष्टि बहुत सुंदर शरद ऋतु के खिले हुए कमल सत सरसी जा, बहुत सुंदर शरद ऋतु के साफ पानी में जो है, और कहां है जो बहुत शुद्ध जगह है, साधु, जहां साधुओं की जगह है, व्रज, साधु जातम ब्रज में। तो इससे क्या गोपियां वर्णन करिए, गोपियां वर्णन करिए कर रही हैं श्री कृष्ण की सुंदरता का। किसके कौन सी जगह, श्री कृष्ण के कौन से अंग की सुंदरता का वर्णन कर रही है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी, फ्रेग्रेंस, कूलनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ कृष्णा आईज। कृष्ण की आंखें कितनी मधुर हैं, कितनी शीतल हैं, कितनी कोमल हैं और कितनी सौरभ वाली है, और वो कितनी गहरी सबसे खजाना हृदय में जो छुपा हुआ है वहां तक पहुंच के उसको चुरा लेती है। तो कृष्ण क्या है, कृष्ण की आंखें क्या है, चित्त चोर है, वो चित्त को चुरा लेता है। जो सामान्य व्यक्ति जिस खजाने तक पहुंच नहीं सकते हैं, जो बहुत गहरा हो, कहीं जमीन में गाड़ दिया हो, ऐसे हृदय में जो छुपा करके वहां तक पहुंच जाता है। तो गोपियां कृष्ण के नेत्रों की, कमल नयन कृष्ण की नेत्रों की महिमा गा रही हैं। ये जो चित्त चोर आपकी आंखें हैं, जिनके द्वारा आप मोहन का, सन्मोहन का पाउडर छिड़कते हो, जैसे ना कहीं आजकल वो किसी को लूटने के लिए वो शीशी सुंघाते हैं, ये आप की चोर चित्त चोर आंखें ऐसा सन्मोहन का पाउडर छिड़कती है जो पागल कर देती है, और उस पागलपन में हमने अपनी सबसे ज्यादा बहुमूल खजाने की राशि, धन राशि, और जो हमारी हमारे प्राण थे, ट्रेजरी ऑफ कॉन्जुगल प्लेजर एंड अवर लाइफ ईयर, हमारे माधुर्य प्रेम का खजाना और हमारे प्रेण प्राण हमने आपके ऊपर निछावर कर दी। तो इसमें गोपियों के कृष्ण की सुंदरता में और उसकी मधुरता में अपने आप को, अपने प्राणों को, अपने प्रेम को कृष्ण को अर्पण किया है, उसकी सूचना मिलती है। तो क्या कृष्ण के आंखों में कभी हमको ऐसा प्रेम दिखाई दिया, कभी उन्होंने हमारी ओर ऐसे दिखा, कभी हमारा चित्त चुराया? ये रूप गोस्वामी के भाव में इसको ऐसे समझना चाहिए कि कृष्ण ऐसे हमारे साथ करे तब हमारा लाभ होगा, ये इसका भाव अंदर का ये है। सबके साथ कृष्ण ऐसे नहीं करते। थोड़ी देर कृष्ण की इन आंखों को देखने का प्रयास करके देखें, आंखें बंद करके, कि कैसी आंखें हैं। शीतल भी हैं, मधुर भी हैं, फ्रेग्रेंट भी हैं, सॉफ्ट भी हैं, कोने बहुत लाल हैं, जैसे कमल की पंखड़ी के कोने बहुत लाल होते हैं, और बड़े विशाल नेत्र हैं, और वो कैसे तिरछी नजर से देखते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की नजर अपने चरणों से आगे जाती नहीं है, और यहां श्री कृष्ण तो कोसों दूर गोपियों को तिरछी नजर से बाण मार देते हैं। तो यहां आपने सब कुछ हमारा चुरा लिया, इसलिए पहले श्लोक में उन्होंने कहा हमारा, हमारे प्राण आपने चुरा लिए हैं और अब हम मर रही हैं, प्राण नहीं है तो कैसे जिएंगी। ये पहले श्लोक में जो अश्व शब्द है, धृत अश्व, और ऐसी चोरी से आप जानते हुए भी हमारे वध का, हजारों गोपियों के वध का पाप आपको लगेगा, और आपको पाप से अगर भय लगता है तो फिर हमारे सामने प्रकट हो जाइए। ये है चक्रवर्ती पाद का भाव। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, आपकी आंखें कमल की जो कणिका है बीच में, शरद ऋतु के साफ जल में प्रकट कमल की कणिका, उसके अंदर जो, उसको चुरा लेता है, चुरा लेती हैं आपकी आंखें। आपकी आंखों का जिसने सुंदरता देख ली, उसको कमल के अंदर कोई सुंदरता दिखाई नहीं देगी। कमल तो क्या सुंदर है, वो आपकी आंख की सुंदरता के सामने कुछ भी नहीं। कमल की सुंदरता को तो हरा दिया आपकी इन मनोहर आंखों ने, ये भाव है। एक आंख का वर्णन किया है, ओनली वन आई इज मेंशन्ड बिकॉज बाय वन आई यू इंडिकेट यूर लव। अगर एक आंख में इतनी सुंदरता है तो दोनों आंख क्या करेंगे, कितना घायल करेंगे। क्योंकि जो श्लोक में शब्द है वो एक वचन में सिंगुलर है, तो ये जो आंख किसके कौन से शब्द से श्लोक में मिलना चाहिए, सुरतनाथ। सुरतनाथ जो प्रेम का प्रस्ताव रखते हैं, आपकी आंखें प्रेम का प्रस्ताव रखती हैं, कमल भी सबको आकर्षित करता है कि बड़ा अच्छा लगता है, परंतु आपकी आंखों के प्रेम का प्रस्ताव जो है, कमल प्रेम का प्रस्ताव तो नहीं रखता है, वो तो केवल सुंदर लगता है, लेकिन आप अपनी आंखों से सुरतनाथ, सुरतनाथ का मतलब प्रेम का क्या शब्द अभी बोला था, वो रिक्वेस्टर ऑफ लव, प्रेम का प्रस्ताव रखने वाले। और इसी आपकी आंखों ने हमारे हृदय में आपको प्राप्त करने की इच्छा प्रकट कर दी, और आपने इन इच्छाओं को अपने नेत्रों के प्रस्ताव से और पुष्ट किया, शक्तिशाली किया, वर्ध बहुत शक्तिशाली किया है। इसलिए हमारा कोई दोष नहीं है इसमें, हमने क्यों आपको हृदय दिया इसमें हमारा दोष नहीं है, आपकी आंखों का दोष है। यही चित्तचोर आपकी आंखें हैं, यही घायल करती हैं, इसलिए हम पागल हो गई। हमारे तो गुण अच्छे हैं, हम तो आपकी निशुल्क गोपी दासियां हैं, दोष आप में है। अभी तो और दोष आपका है कि आप हमारा वध कर रहे हो। इसलिए कृष्ण में दोष दिखाते हुए कह रही हैं कि आप तीन प्रकार से हमारी चोरी कर रहे हैं। आपको एक तो दूसरे के घर में क्या खजाना है उसका पता है, और जो रास्ते में रुकावटें हैं उसको भी आप मिटाना जानते हैं। In order to show his fault, they indicate that he is absorbed in theft in three ways। तीन प्रकार से चोरी में लगे हैं, उनका दोष दिखाने के लिए कह रही हैं। He does not consider the great fault from taking wealth of righteous। भले आदमी के धन को चुराने में वो कोई गलती नहीं, कोई दोष नहीं मानता। और दूसरा, he has knowledge of other secret treasure। दूसरों के पास कौन सा गोपनीय धन है इसको सब मालूम है। And he trespasses the greatest obstacles। जितनी रुकावटें हैं उन सबको हटा देते हैं। The first aspect of the thievery is expressed in the lotus growing in the autumn lake। पहली चोरी शरद के कमलों के वर्णन में आया। The producer of the lotus, the lake is pure। जिसमें कमल उगते हैं वो पवित्र जल है। It is birth is pure। साधु जात सत सर्जित, the qualities and form of lotus are proper, सत सर्जित। The second aspect is expressed by center of the lotus hidden within its petal, क्योंकि साधु जैसा कमल है, इसका मतलब भले आदमी का धन चुरा रहे हो। अब दूसरी बात, उस कमल की पंखड़ियों के अंदर बहुत गहरे पानी में वो कमल की पंखड़ियां हैं। और तीसरा है, थर्ड एस्पेक्ट एक्सप्रेस्ड बाय द सेंटर ऑफ द लोटस बींग सराउंडेड बाय थाउजेंड पेटल्स, कितने हजारों कमल की पंखड़ियों के बीच में वो कणिका है, देखना ही मुश्किल है, बहुत गहरे पानी में है और ये बरसात का पानी है। आपने उस कमल की सुंदरता को चुरा लिया। कमल ने इतना छुपा के क्यों रखी थी सुंदरता? आपसे बचाने के लिए। अरे हन गरीब गोपियों का हम व्हाट टू स्पीक ऑफ स्टीलिंग अस इनोसेंट गोपीज हु वांडर फ्रीली इन ब्रज एंड वृंदावन। उस कमल के जो गहरे पानी में और हजारों पखड़ियों के बीच में, उसको भी चुरा लेते हो। जो साधु साधु है, सही व्यक्ति का धन है, बहुत छुपा हुआ है, सारे रास्ते की रुकावटें काट देते हो। हम तो बहुत सरल गोपियां ब्रज में विचरण कर रही हैं, गैया चरा रही हैं, गोबर को लेप रही हैं, इसमें हमारे हृदय के धन को चुराओ कौन सी बड़ी बात है? चलो इस बात को भूल जाओ कि आपने हमारे हृदय की चोरी की। आपने उस कमल की सारी सुंदरता को चोरी करके अपने आंखों में भर दिया है। परंतु हम परंतु हमा हम क्या है? बट वी ऑन द अदर हैंड बींग इनोसेंट स्टोलन बाय फोर्स सर्विंग कॉजलेसली विदाउट हेट्रेड विदाउट एनी फी आर बींग किल्ड बाय यू, दिस इज मोस्ट अनजस्ट। हम तो निःशुल्क दासियां हैं, आपकी सेवा में है, आपसे प्रेम करती हैं, आपने हमारा वध कर दिया। क्या हम आपका आप हमको मारना चाहते हैं? क्या लोग आपके इस हमारे हृदय चुराने की बात नहीं जानेंगे? आपने तो कहा का प्रेम का प्रस्ताव रखा था, आपने कहा आशीर्वाद दूंगा, हम ये सब जानती हैं, ये सब झूठ है, आप हमारा वध कर रहे हैं। ते अशुल्क दासी का एक अर्थ है, ते शुल्क दासी का, हमको हमको चाहिए वेतन चाहिए, कौन सा आपकी सेवा के लिए हमारे को कुछ तनख्वाह चाहिए? क्या तनख्वाह चाहिए? आपके आंखों की सुंदरता, बस यही मांगती है और कुछ नहीं मांगते। आपकी आंखों की सुंदरता हमें बहुत पसंद है, परंतु आप फिर भी हमको त्याग रहे हैं। ये नाथ सुरत, जिसमें बहुत प्रेम है, सु मतलब अधिक, रत मतलब प्रेम, हे हे एक अधिक प्रेम वाले स्वामी, हे वरदा वर को वर देने को रोकने वाले, आइए अपनी गलतियों का निवारण कीजिए। श्री मुषा, सनातन गोस्वामी लिखते हैं, श्री मुषा का अर्थ है भगवान की आंखें महान चोर हैं। श्री मुषा की परिभाषा है भगवान की आंखें महान चोर हैं। मेरे ख्याल में आपका समय हो रहा है, सनातन गोस्वामी का पढ़ लेते हैं दो शब्द हैं। हम आपकी अशुल्क दासी का है, सुरत नाथ और वरदा, ये दो शब्द कहते हैं कि आप भले हमारा वध करो लेकिन हम मरेंगी नहीं, क्योंकि आप अति उत्तम प्रेम का प्रस्ताव रखने वाले हो और वरदान देने वाले हो। आप तो सुरत हो, आपके प्राम प्रेम करने वाले हो, और वरदा हो, आप प्रेम पुरुषोत्तम हो, आपने हमारे हृदय में प्रेम की इच्छा उत्पन्न की है और वरदान दिया है, कात्यायनी व्रत का वरदान भी दिया है, इसलिए अगर हम आपको कहती हैं कि आप आइए दर्शन दीजिए हमारे साथ प्रेम कीजिए, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये बुद्धिमान। हमारे मृत्यु के लिए आपको दोष लगेगा, हे प्रेम पुरुषोत्तम, ये आपकी आंखें हैं दृश्या श्रुतनाथ, आंखों से ही आप प्रेम का प्रसाद देते हैं और अभी निगंत अभी इनसे ही हमको आप मार रहे हैं, ये पाप लगेगा आपको हमारे वध का, अथवा आपके आंखों का ही हमको मोल दे दीजिए, हम बेमोल गोपी सेविकाएं नहीं है, आपके आंखों का मोल चाहिए, क्योंकि यही तो चोरी करके सब कुछ हमारे से ले गई है, हमने आपको पहले ही दान दे दिया है, वी हैव पेड द प्राइस, और बिन नहीं तो दूसरा अर्थ यह कि कुछ दिया नहीं और फिर भी मार दिया, आपने जुदाई का तो दर्द दिया और हमको त्याग दिया, इसी के कारण हमारा मृत्यु तो होगा ही, परंतु गोपियां प्रार्थना में संबोधन क्या कर रही हैं, श्रुतनाथ हे प्रेम के, हे प्रेम के देवता, हे वरदाता, ये क्रोध में कह रही हैं, ये मान में कह रही हैं, ये एंगर एंड लव आर इंटेंस पेन ऑफ सेपरेशन, ये माननी गोपियां कह रही हैं, ये नाथ आप हमको पीड़ा दे रहे हैं, जो आपसे बहुत आप में आ सकते हैं सुरत, आप हमारा सब वरों को नाश कर रहे हैं, जो आपने वर दिया था उसको नाश कर रहे हैं, इसलिए आप आइए अपने दोष का निवारण कीजिए, या हमारे दोष लोग पूरे होते हैं, हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए, अथवा और कोई सलाह देनी है तो बोलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, यस प्रभु, हरि बोल, गोपी गीत की जय, कृष्ण बलराम की जय, हरे कृष्ण।
बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी, आपका बड़े सुंदर तरीके से आपने गोपियों का विरह भाव का व्याख्या किया, और किस तरह से आपने हमको समझाया कि सामूहिक तरीके से हमको भगवान की सेवा में जुटना है और अपना अभिमान छोड़ के सबके साथ मिलजुल के हमको कार्य करना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए सबसे निवेदन करेंगे, किसी का कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं, 5 मिनट का समय है हमारे पास, तो किसी को कोई प्रश्न है जिज्ञासा है तो हमसे प्रभु जी से पूछिए।
हरे कृष्णा, ये तात्पर्य के साथ आपको ओके, इसको थोड़े शायद करें, इसको नॉर्मल करें, क्या करें?
सॉरी प्रभु जी, क्या बोल रहे?
जिस तरीके से ये हमने आज के दो दो रोज करेंगे तो 9 दिन में हो जाएगा, मैं समझता हूँ 8-9 दिन में हो जाना चाहिए, ऐसा भाव है इसके प्रति। अब आपका क्या भाव है, कैसे करना चाहिए इसका वर्णन?
हरे कृष्ण गुरु जी।
हाँ जी,
आगे के कुछ श्लोकों में परपट नहीं है, तात्पर्य नहीं है।
कहा हमारे पास तात्पर्य तीनों आचार्यों के बहुत लंबे हैं।
जी जी,
ऐसा नहीं है कि नहीं है तात्पर्य। मैं अभी देख के बता सकता हूँ, मैं समझता हूँ सभी के श्लोकों के तात्पर्य और विस्तार से हैं।
जी जी प्रभु।
तो मेरे ख्याल में श्री वल्लभ प्रभु ने कहा था कि तो कितना करें, एक रोज करें, या तो हमने कहा 2 कम से कम रोज करने का रखेंगे, कि 2 कम हो जाए तो अच्छा है। तो आज तो हमने तीन आचार्यों के तात्पर्य के साथ दो श्लोकों का आपके साथ वर्णन किया, आपका क्या, कैसे आपको लगा कि ये ठीक है इसमें या कुछ ज्यादा है?
उपयुक्त था प्रभु जी, बिल्कुल परफेक्ट था, टाइमिंग के हिसाब से भी अच्छा था और बढ़िया था, दोनों एक्चुअली रिलेटेड भी था आज का। तो
अब आगे देखें क्या आता है, देखें भगवान के आंसर से कहते हैं प्रेरणा क्या है। और किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है इस विषय में?
हरे कृष्ण प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है कि जब हम लोग जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे हमारे हृदय में थोड़ा डर रहता है कि भगवान है, लेकिन यहाँ पर हम जब गोपियों का भाव देखते हैं तो गोपियां प्रेम, एक तो प्रेम में है बिल्कुल, भगवान की सेवा करना चाहती हैं प्रेम के द्वारा, और दूसरा वो भगवान को, जैसे आपने आज बताया कि वो डांट भी रही है, और तो हम लोग ये जो जो भगवान से थोड़ा हम डरते हैं हृदय में हमारे रहता है कि वो भगवान है, तो इस चीज को प्रेम की तरफ कैसे, कि हमको सच में भगवान से प्रेम हो जाए और हम सुदृढ़ हो जाए अपनी भक्ति में।
एक जनरली कहा जाता है जिना मन भय तिना मन भाव, जिनके हृदय में थोड़ा भय होगा आदर होगा उसके अंदर भाव का उत्पन्न होगा, यह है आरंभिक अवस्था या बिगनिंग। और प्रभुपाद जी वैसे कहते हैं हमारी स्थिति ये होना चाहिए कि हम हमेशा दास्य भाव में रहें और बड़े आदर के साथ रहें, और हमारा विचार व्यवहार सब ऐसे हो समाज में, परंतु आंतरिक जब सिद्धि को प्राप्त हो, स्वरूप सिद्धि को प्राप्त हो, हमारा भाव क्या है वो हमको जब प्रकट हो जाए, तो चैतन्य चरितमृत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल भाव से, भय से, प्रार्थनाओं से, वेदों के उच्चारण से मेरी पूजा करते हैं उससे मैं इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना कोई माता पिता मेरे को डांटे या कोई मित्र मेरे की बराबरी करके और या कोई प्रेमिका मेरे भर्षण करे, वो मुझे बहुत प्रेम प्रिय लगता है। तो भगवान को भी पूजा करने वाले तो लाखों करोड़ों हैं, मीठा मांस खा के थक जाते हैं, इसलिए कोई डांट खाने में उनको इच्छा होती है कि कोई प्रेमी ऐसा हो जो मुझसे भी प्रेम से डांटे, तो ये भगवान की इच्छा चैतन्य चरितमृत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। परंतु इस स्तर के ऊपर आने के लिए पब्लिकली ये करने का मना किया हुआ है शास्त्र ने, बाहर से हमको साधक के रूप से सेवा के भाव में रहना है, अंदर में हृदय में अगर सिद्ध स्थिति हमारे को प्राप्त हो जाए कि हमारा भाव क्या है कृष्ण के प्रति, तो ऐसा भाव, कुछ भक्तों ने ऐसे भाव का प्रदर्शन किया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, परंतु प्रेम को ही हमको जगाना है। भय वाली भक्ति जो है वो उसको कहते हैं ऐश्वर्यमय भक्ति, वो राग मार्ग की भक्ति नहीं है, राग मार्ग की भक्ति में भय नहीं होता है, प्रेम होता है, वैदी भक्ति में भय होता है आव एंड रेवरेंस, और राग भक्ति में प्रेम होता है, आव रेवरेंस नहीं होता है। और हम जो गौरिया वैष्णव है प्रायः हमारा सॉफ्टवेयर ही राग भक्ति का है। हरे कृष्ण,
धन्यवाद, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, और कोई एक आधा प्रश्न है क्या?
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
दंडवत प्रणाम, क्या समाचार है? विपिन के पिता बोल रहे हैं, विपिन बोल रहा है कि पिता?
विपिन के पापा ही।
हाँ, विपिन का पापा बोल रहे हैं, बोलिए प्रभु।
और आपकी तबीयत ठीक है ना?
कृष्ण कृपा
प्रभु जी, जैसे हम लोग यहाँ पे हर घर घर के अंदर भी मंदिर है भगवान के, तो जिस स्थान पे हम रहते हैं वहां भी मंदिर होता ही है, तो भगवान के दर्शन करते हैं, फिर भी हम लोग जैसे धाम में क्यों जाते हैं, जैसे पुरी में चले गए, मायापुर चले गए, वृंदावन चले गए, तो हमारा रहते हैं वहां जाके दर्शन करें, तो ऐसा क्यों होता है?
देखिए, आपके किचन में भी चावल पड़ा है, दाल पड़ा है, लेकिन आप सुपरमार्केट में क्यों जाते हैं? वहीं से सब आता है। और वहां अनंत है। असल में क्या है कि हमारे घर में भगवान है लेकिन वहां लीला स्त्रियां नहीं है। अगर आप वृंदावन में आएंगे तो जो आप पढ़ रहे हैं गोपियों का गीत, ये गोपियों ने कहां गाया है वो जगह देख सकते हैं और जमुना जी को देख सकते हैं। तो आपका ये हो गया टेलीविजन की तरह दर्शन करना, और अब आप घर में कर रहे हैं वो रेडियो से सुन रहे हैं, तो दोनों में अंतर है। और ये धाम जो है, इन धामों को भगवान के भक्तों के संग में देखने से ये हमारी जो लीलाएं हैं भगवान की, ये हमारे हृदय में उस वक्त अपने आप स्फुरित होने लगेंगी जब धाम का दर्शन करेंगे। ऐसे लोग घूमने जाते हैं ऐसे नहीं, भक्तों के संग में जाके और हमारे धाम दर्शन वालों को लिए पहला फार्मूला होता है कि ये दो प्रश्न नहीं पूछेंगे वही धाम का लाभ लेंगे। हमारे प्रायः धाम जाने वाले दो ही प्रश्न पूछते हैं, कमरा कहाँ है, प्रसाद कहाँ है। जो कमरा और प्रसाद को भूल के कहेंगे लीला कहाँ कहेंगे, कौन सी लीला कहेंगे, तब हमारे धाम प्रकट होगा। हमने बहुत दर्शन करके धाम का भ्रमण करके देखा है, दो ही प्रश्न पूछते हैं, कमरा कहाँ है, प्रसाद कहाँ है। ये दो चीजें भूल जाओ, जहां मिले जैसे मिले, परंतु कौन सी लीला कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, इसका दर्शन करेंगे तब धाम प्रकट होंगे। वैसे पंचांग भक्ति में धाम निवास, धाम वास को महाप्रभु ने बहुत महत्व दिया है, परंतु धाम में ऐसा भी चाहिए, रूप गोस्वामी ने लिखा है कि वृंदावन में आप शरीर से रहो या मानसिक रूप से रहो, परंतु धामों का दर्शन करना। अपने भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जय जय स्थान है, श्री कृष्ण का लीला स्थान है, उन सब स्थानों को मैं प्रेमी भक्तों के संग में भ्रमण करूंगा, जहां हमारे गौर ने लीलाएं की है गौर मंडल में, उन सबका दर्शन करूंगा। ये भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है एकादशी वाला, जय जय स्थान है कृष्ण लीला किया है, प्रणयी भक्त संगे उनको देखूंगा, तो वर्णन तो है उनका। गौर हमारे स्थान कर, ये तो ये भजन है कि हमारे को इन जगहों पे जाना चाहिए। और ये मायापुर और वृंदावन की परिक्रमा तो प्रभुपाद ने शुरू कराई थी वृंदावन की, आजकल ब्रजमंडल की 84 कोस परिक्रमा कार्तिक में होती है और गौरमंडल परिक्रमा होती है। ऐसे भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने श्री क्षेत्र की परिक्रमा भी शुरू की है, तो उससे हमारे को वैसे ये सब परिक्रमा नवयुवक अवस्था में करनी चाहिए, हमारी अवस्था में चलना ही मुश्किल होता है। स्वयं नित्यानंद प्रभु पूरे भारत के तीर्थों का भ्रमण किया है, बलराम जी ने सारे तीर्थों का भ्रमण किया है, ये दोनों तो आदि गुरु हैं। जब गुरु ने तीर्थ का वर्णन किया है तो फिर तो शिष्यों को करना ही चाहिए ना परंपरा में। हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी,
धन्यवाद। आइए आइए वृंदावन में आइए, दर्शन करके जाइए।
बिल्कुल बिल्कुल, आपके भी दर्शन करेंगे, भगवान के करेंगे, भक्तों के दर्शन करेंगे।
आइए 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 आइए,
स्वागत। यही 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 प्रभु से बात हो रही थी, वो प्रभु जी ने भी यही बोला था, उन्होंने बोला था कि भगवान के दर्शन तो हम कहीं भी कर सकते हैं, हमारे घर में भी कहीं भी कर, परंतु धाम में जाने से कि महाराज के दर्शन होते हैं, भक्तों के दर्शन होते हैं, वहाँ की लीला स्थली के दर्शन होते हैं, तो बहुत से दर्शनों का लाभ मिलता है धाम में जाने का।
अंतर ये है ना, आपके घर में गंगा जल की बॉटल पड़ी है और हरिद्वार में गंगा में देखेंगे, दोनों में अंतर तो है, दोनों का काम एक है लेकिन अंतर है।
हरे कृष्ण प्रभु जी, एक और प्रश्न है चैट बॉक्स में,
क्या है,
जहाँ पे पूछ रहे हैं कि गोपी गीतम कब गाना चाहिए भगवान कृष्ण के समय उनके सामने।
जब गोपी बनने की इच्छा हो, जब तक टोपी पहने तब तक नहीं पाए गाएं। हमारे यहाँ वृंदावन में कार्तिक महीने में रात को दामोदर आरती के बाद ये भक्त लोग गाते हैं, बहुत बड़ा समाज इकट्ठा होता है कृष्ण हाल में, और तब रोज का गोपी गीत गाते हैं। वैसे कुछ साधु ब्रज में ऐसे हैं जो रास पंचाध्याय रोज पढ़ते हैं। असल में ये गोपी गीत और ये सब काम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए है, ये जिनको उस स्थिति में आना है उनको इसका पाठ करना चाहिए। और ये आपका पाठ कर रहे हैं बहुत अच्छा है, गोपी गीत का पाठ है, ऐसे बहुत सी प्रार्थनाएं हैं, कोई कुंती महारानी की प्रार्थना का पाठ करता है तो गोपी गीत का तो पाठ सब सर्वश्रेष्ठ है, पर करना उनके चाहिए जिनके हृदय में माधुर्य भाव का उदय हुआ है, कि सखा भाव वालों का ये नहीं है, ये माधुर्य भाव का है। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ जी
प्रणाम प्रभु जी। जैसे अभी हम लोग गोपी गीत का हम लोग यहाँ पे प्रसंग सुन रहे हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जब भगवान अदृश्य हो गए थे तब गोपियों ने गीत गाना शुरू किया था। तो हमें भक्तिरसामृत सिंधु की तीसरी सिंधु में पांचवे अध्याय के 25वें जो श्लोक है उसमें पता चलता है कि विप्रलंब में पूर्व राग मान और प्रवास होता है। तो अब यहाँ पर जो पूर्व राग यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है गोपियों का यहाँ पे कि, और ये हम अपने भजन में इन तीनों को कैसे यूज कर सकते?
पूर्व राग जो है ना, पूर्व राग है वेणु गीत, जब मिली नहीं थी गोपियों के मिलने से पहले का गीत है वो है पूर्व राग का। ये तो मिली है, रास किया है, ये तो विरह का गीत है।
परंतु यहाँ पर तो गोपियां वापस से बिछड़ने की उनकी भाव आ रहे, क्योंकि भगवान वहां से अदृश्य हो गए तो उनको वापस प्राप्त करना चाह रही।
तो फिर भी तो इसको ये तो विरह का भाव है, उनसे प्राप्त तो करना है लेकिन पूर्व का मतलब है पहले कभी मिली नहीं है। वो जो वेणु गीत है उसको पूर्व राग कहते हैं।
और प्रभु जी हम अपने भजन में इसको कैसे यूज करते हो? यहाँ पे जो भाव है गोपियों का कि वो भगवान को प्राप्त कर चुकी हैं,
देखिए
उनको देख लिया परंतु वापस से,
ये तो फिर भगवान कहीं गए नहीं है इनके बीच में, इनके प्रेम को पुष्ट करने के लिए भगवान अदृश्य हुए ताकि इनका प्रेम अंतरंग हो जाए, केवल शरीर स्तर के पे नहीं हो लेकिन हृदय में सदा भगवान को धारण करे, इसका भाव भगवान यही प्रकट करेंगे। लेकिन इस गोपियों के पांचों अध्यायों को एक ही श्लोक में भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र में प्रार्थना की है। एक भीष्म की स्तुति का एक श्लोक में पांचों अध्याय रास के हैं। इसका अर्थ वहां ये लिखा है कि हम भक्तों को भीष्म पितामह किए एक महाजन की मार्गदर्शन में गोपियों की प्रार्थना करके उनकी कृपा से कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए इसको गाना चाहिए। ऐसे नहीं कि गोपी बन के कृष्ण को पाने के लिए, गोपियों की कृपा से कृष्ण की सेवा को प्राप्त करने के लिए इसको गाना चाहिए। ये भीष्म स्तुति के अंदर एक श्लोक में पांचों अध्याय। भागवतम 1:9 के भीष्म स्तुति का भीष्म से ये 40वां श्लोक तदा, हाँ नहीं नहीं क्या 40वां तो नहीं है, 40वां नहीं है, ये होगा ये 40वां है। ललित गति विलास वलगुहास प्रण्य निरीक्षण कल्पत उत्मा कल्पितोरोनामानाः कृत मनो कृत वत्यः उन्मादन्दाः प्रकृतिं गत कील यस्य गोप वद्वा। ये 40वां श्लोक 1:9 का देखिए, इसमें 5 अध्याय पूरे गोपी के। ये श्लोक में ललित गति विलास वलगुहास ये तो है भगवान का गोपियों को बुलाना, और प्रणय निरीक्षण कल्प उत्तरा ये है गोपी गीत का भाव कि अब उनका अभिनय करने लगी, कृतानुकृत्य कृतानुकृत्य जैसे भगवान ने किया ऐसे किया, उन्माद अंधा, ये गोपी गीत गा रही है, प्रकृतिम गत कील यस्य गोप वदवा, और फिर वापस गोपियां मिलती हैं। तो कहते हैं ये जो गोपियों की कृपा को प्राप्त करने के लिए भीष्म पितामह ने इस भाव को प्रकट किया है कि गोपियों की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का, वैसे भीष्म पितामह दास्य भाव का भक्त है, परंतु वो भी गोपियों की कृपा से, जैसे जैसे हम देखते हैं दामोदर अष्टक में भी राधिका या त्वदीया प्रिया है, तो राधिका को कृपा करके गोपी को प्रार्थना करके कहते हैं कि भाव तो उस भक्त का जो है वात्सल्य का है, ऐसे लग रहा है दास्य भाव है, परंतु जैसे भाव कोई भी हो लेकिन गोपियों की कृपा से, जैसे हरे कृष्ण मंत्र में राधा रानी को ही कृपा मांग रहे हैं कृष्ण की सेवा करने की, तो इसी भाव से हमको गोपी गीत गाना चाहिए कि गोपियां कृपा करेंगी तो हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम का उदय होगा।
प्रभु जी ये तो समझ में आया, पर हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग मंदिर के सामने जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, और जैसे मंदिर से भगवान का दर्शन करके हटते हैं, हमारे अंदर वो भाव कभी नहीं आता कि अब हम भगवान के सामने अब नहीं हैं, हम एकदम से भूल जाते कि हाँ हमने कभी दर्शन किया भगवान का। यहाँ पे गोपियों ने भगवान का दर्शन भी किया, उनसे मिलन भी किया, परंतु बिछड़ने के बाद भी उनके अंदर एक लालसा है, ये लालसा प्रभु हमारे भजन में कैसे आ सकती है?
बहुत अच्छा प्रश्न है। असल में हम कहते हैं जब हम मंदिर का दर्शन करने जाते हैं तो चरण से लेके भगवान के मुख तक देखें, उनके चरणों में क्या पहना है, आज कौन सी पायल है, फूल है, उनके वस्त्र का रंग आज कैसा है, उनके बाल कैसे बने हुए, और इसको देख के थोड़ी देर वहीं बैठ के आंखें बंद करके उसको हृदय में धारण करें और बाहर निकल के आए। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, सुबह दर्शन करके आया हूँ, मैं आंखें बंद करके देखूँ तो मेरे को दर्शन देखने में आने चाहिए, ये दर्शन की मर्यादा है। कम से कम 3 बार अगर मंदिर के निकट हैं या घर में भगवान का दर्शन करके उसको हृदय में ऐसा विराजमान करना चाहिए कि आप अगर मंदिर में नहीं हैं, हम मंदिर से बाहर भी हैं, आंखें बंद करें तो हमारे को भगवान दिखाई दे। ये भाव हमको ये मंदिर स्थापित इसलिए किए हैं कि वो विग्रह हमारे हृदय में बस जाए, हमारी साधना का ये अंग है बहुत, ये पंचंग भक्ति में विग्रह की श्रद्धा पूर्वक पूजा करना भक्ति का अंग है, और अपना आराध्य देव जो भी आपने अपने हृदय में बना रखा है, आपके घर का ठाकुर है या मायापुर का राधा माधव है या वृंदावन का राधा श्याम या कृष्ण बलराम है, वो आपके हृदय में सदा बसते रहे, ऐसा भाव होना चाहिए।
हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवाद प्रणाम,
थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त विकेंद्र की जय, कल मिलेंगे, तीसरा और चौथे श्लोक का पाठ करेंगे जितना आगे हो सका। हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण, प्रभु जी की।